हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। आरना और उसके बेचैन दिल को रिदांश की बातें सुनकर काफी हद तक सुकून और राहत मिली। लेकिन आरना की ये राहत और सुकून कुछ पल बाद ही रिदांश के सवाल सुनकर कश्मकश और उलझन में बदल गए। रिदांश गंभीरता से, कौन है वो? रिदांश की बात सुनकर आरना के चेहरे पर असमंजस, उलझन और कश्मकश जैसे भाव उभर आए। आज आरना के रिदांश का जो बर्ताव देखा था, उसे लेकर उसके मन में एक बार ये ख्याल आया कि वो करण के बारे में उसे सब सच बता दे। लेकिन फिर अगले ही पल उसके साथ बीते पिछले दिनों और अपने साथ रिदांश का बर्ताव याद करते हुए उसे संकोच होने लगा और वो दुविधा में घिर गई कि आखिर में वो क्या करे। रिदांश जब आरना के चेहरे पर असहजता के भाव देखता है तो वो उससे दोबारा कुछ नहीं पूछकर उसे सोने के लिए कहता है और आरना भी चुपचाप अपनी आंखें बंद करके लेट जाती है। आरना को अभी भी डरी हुई देखकर रिदांश वापस कमरे की लाइट्स ऑफ किए बिना ही अपनी जगह लेट जाता है। अगली सुबह संडे था तो रिदांश भी घर पर ही था। समांथा किसी काम से बाजार गई थी और प्रिशा कल्पना जी के साथ थी। आरना इस वक्त कमरे में अकेली थी और काफी देर से फ्रेश होने के लिए जाने के लिए किसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि कल के हादसे के बाद आरना अब खुद से ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। कुछ देर बाद ही एक शेफ आरना के लिए नाश्ते की ट्रॉली लेकर कमरे में आता है। आरना उसे ट्रॉली कमरे में रखकर जाने के लिए कहती है और वो शेफ आरना के कहे अनुसार नाश्ते की ट्रॉली को वहां छोड़कर चला जाता है। काफी देर बाद रिदांश फोन पर बात करता हुआ कमरे में आता है। रिदांश फोन पर अपने मैनेजर से बात करते हुए, कल के बाद नम्या की सगाई तक जो भी मीटिंग है सब की सब कैंसिल कर दो और कल सुबह मेरे ऑफिस आने से पहले ही कल की मीटिंग्स की सारी डिटेल्स मेरे टेबल पर होनी चाहिए। गॉट इट मैनेजर? यस बॉस। गुड। इतना कहकर रिदांश फोन रख देता है और अनायास ही उसकी नज़र नाश्ते की ट्रॉली पर पड़ती है, जो ऐसी की ऐसी ही थी जैसी कमरे में आई थी। और उसे देखने भर से ही मालूम पड़ रहा था कि उसमें से आरना ने अब तक किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। ये देखकर रिदांश अपनी भौंदें उचकाते हुए आरना को देखने लगता है, जो बेड पर एक तरफ असहज सी बैठी थी। रिदांश तंज भरे लहजे में, ये नाश्ता खाने के लिए कोई इनविटेशन आने वाला है तुम्हारे पास? आरना थोड़ा असहज होकर, मुझे फ्रेश होना है, प्लीज़ आप समांथा या प्रिशा को बुला देंगे? समांथा मार्केट गई है, नम्या अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर गई है और प्रिशा इस वक्त माँ के साथ है। अगर तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए तो तुम कह सकती हो। रिदांश आरना से ये कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उसके मुंह से आरना को मदद करने की बात खुद ही निकल गई। और रिदांश चाहे लाख कोशिश कर ले तब भी उसकी बातें और उसके चेहरे के भाव सख्त ही बने रहते थे। और इस वक्त भी वो आरना से अपने लफ्ज़ों को सामान्य लहजे में ही कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसकी ज़ुबान और व्यवहार में सालों की ये सख्ती और रूडनेस अब घर कर चुकी थी और अब अगर वो चाहे भी तो भी दूसरों से सामान्य होकर बर्ताव नहीं कर सकता था। और यही इस वक्त भी हुआ और आरना को अभी अभी कहे रिदांश के उसकी मदद का ऑफ़र भी बस तंज और एहसान से भरा ही नज़र आ रहा था। आरना, इट्स ओके, मैं वेट कर लूँगी। फाइन, एज योर विश। इतना कहकर रिदांश अपना लैपटॉप उठाकर सोफे पर बैठकर अपना काम करने बैठ जाता है, लेकिन सारे वक्त उसका ध्यान आरना और उसकी असहजता पर ही था। लेकिन उसकी ईगो उसे ये बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो एक बार मना करने के बाद दोबारा खुद ही उसे दोबारा अपनी हेल्प ऑफर करे। दूसरी तरफ बढ़ते पलों के साथ ही आरना की असहजता भी बढ़ती जा रही थी। एक पल उसके मन में आया भी कि वो अपने लैपटॉप में बिजी रिदांश को ही अपनी हेल्प करने के लिए कहे, लेकिन अगले ही पल उसने ये विचार त्याग दिया। लेकिन अब उसे खुद को और ज्यादा देर तक रोक पाना मुश्किल हो रहा था और इसकी असहजता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी और वो बार बार दरवाजे पर समांथा या प्रिशा के आने का इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ बहुत सोचने और आरना को यूं बेचैन और असहज होता देखने के बाद आखिर में रिदांश अपने लैपटॉप को सोफे पर पटकते हुए और अपनी भरी हुई ईगो को साइड में रखते हुए उठकर आरना के पास जाता है और अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाता है। आरना थोड़ा असहज होकर, मैं चली जाऊंगी आप? रिदांश बिना भाव के उसे बीच में ही टोकते हुए, मैं तुम्हें यूं बेवजह हिलते डुलते देख और ज्यादा इरिटेट नहीं हो सकता? आरना रिदांश की बात सुनकर बस खामोश हो जाती है। रिदांश आरना को बाथरूम में ले जाकर सहारे से खड़ा करते हुए उसकी असहजता को देखकर, इट्स अ नेचुरल थिंग, सो जस्ट रिलैक्स। आरना अपना सर हाँ में हिला देती है ब्लैंक एक्सप्रेशन से, और हाँ मैं बाहर ही हूँ, जब फ्रेश हो जाऊँ तो आवाज दे देना। फालतू में झांसी की रानी बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें यूं ही उठाकर नहीं घूम सकता। इतना कहकर रिदांश बाथरूम का दरवाजा बंद करते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है, और उसके जाने के बाद आरना को आज पहली बार उसके बातों से गुस्सा या चिढ़ नहीं हो रही थी, बल्कि अभी कुछ पल पहले कहीं रिदांश के बातें याद करते हुए अनायास ही उसके होंठों पर मुस्कान तैर जाती है। आरना मुस्कुराकर अपना सर हिलाते हुए, खड़ूस। कुछ देर बाद फ्रेश होने के बाद आरना रिदांश के कहे अनुसार उसे आवाज देती है, और एक ही आवाज पर रिदांश अंदर आ जाता है और वापस आरना को अपनी गोद में उठाते हुए बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर बैठा देता है, और एक शेफ को बुलाकर आरना के लिए गरम नाश्ता लाने का ऑर्डर देता है। और कुछ ही देर में शेफ नाश्ता लाकर आरना को परोसता है, और आरना सीधे हाथ में चोट लगने की वजह से मुश्किल से अपने उल्टे हाथ से खाना खाती है। और ये देखते हुए भी इस बार रिदांश ने उसकी कोई हेल्प नहीं की, लेकिन अभी भी उसका सारा ध्यान आरना पर ही लगा था। पूरा दिन यूं ही निकल जाता है, और शाम को डॉक्टर आरना के हाथ और पैर की ड्रेसिंग करने आते हैं और उसे पेन किलर का इंजेक्शन देते हैं, जिसकी वजह से उसे जल्दी ही गहरी नींद भी आ जाती है। रात के करीब 1 बजे थे और रिदांश अभी भी जागा था। रिदांश को हल्का सर दर्द महसूस हो रहा था, इसीलिए रिदांश अपने एक नौकर को फोन करके अपने लिए कॉफी लाने के लिए कहता है कि तभी आरना के फोन पर मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ जाता है। पहली बार तो वो इस बात को इग्नोर कर देता है, लेकिन जब कुछ पल बाद ही 1 मिनट के गैप से कई बार नोटिफिकेशन साउंड होता है, तो उसे याद आता है कि कल आरना भी अपने फोन में कुछ देखकर अचानक ही परेशान हो गई थी। ये सोचते हुए वो आरना के फोन की तरफ आरना की साइड टेबल की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन फोन में पासवर्ड था। रिदांश कुछ पल तक कुछ सोचता है और फिर पासवर्ड के 2 बार पापा यानी पापा टाइप करता है, और पहली बार में ही रिदांश का अंदाजा बिल्कुल करेक्ट बैठता है और पासवर्ड खुल जाता है। और जैसे ही वो फोन का पासवर्ड खुल जाने के बाद मैसेज के नोटिफिकेशन ओपन करके मैसेज देखता है, तो उसके चेहरे के भाव अचानक ही सख्त और गुस्सैल हो जाते हैं, और वो एक एक करके जैसे ही वो मैसेजेस पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे पर वैसे ही और भी ज्यादा गुस्सा उभरने लगा था। वो मैसेजेस कुछ इस तरह से थे, हाय कैसी हो मेरी जान, आई मिस यू, और मैं जानता हूँ तुम भी मुझे इतना ही याद कर रही होगी जितना कि मैं, बस ये मजबूरी कुछ ही वक्त की और है। जानता हूँ तुम भी मेरी ही तरह मुझसे मिलने और मुझे देखने के लिए बेचैन हो।
तुम मेरे मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? क्या तुम्हारा सो कॉल्ड पति वही है तुम्हारे पास? बस कुछ वक्त और सब्र करो, फिर मैं उस अग्निहोत्री को खुद हम दोनों के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। तब तक के लिए खुद को मेरी अमानत समझकर अपना ध्यान रखना। योर डेस्टिनी। ये मैसेजेस पढ़ते ही रिदांश का खून खौल उठा था और उसने फौरन इस नंबर को डायल करना चाहा, लेकिन वो नंबर प्राइवेट था, तो शायद इसीलिए कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अभी रिदांश इसी सब में उलझा था कि तभी अचानक आरना की नींद खुल जाती है और वो रिदांश को अपना फोन देखते हुए उठकर बैठ जाती है। आप मेरे फोन में क्या चेक कर रहे हैं? दुनिया जहां के गुस्से से आरना की तरफ देखकर उसके आगे मैसेजेस दिखाते हुए, कौन है ये? मैसेजेस देखकर घबराते हुए, मुझे नहीं पता। गुस्से से आरना के फोन को जमीन पर पटकते हुए खतरे के भाव के साथ, आधी रात को ये तुम्हें प्यार और मोहब्बत भरे पैगाम भेज रहा है और तुम्हें नहीं पता ये कौन है? आरना रिदांश के इस कदर गुस्से को देखकर सहमते हुए, मैं सच कह रही हूँ, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। यकीन, और वो भी तुम्हारा? तुम जैसी लड़की से इससे ज्यादा की उम्मीद भी क्या की जा सकती है? और आज तुमने साबित भी कर दिया कि मैं आज तक तुम्हारे बारे में जो सोचता आया हूँ वो बिल्कुल ठीक सोचता आया हूँ। आरना नम आँखों से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, नहीं, मेरा यकीन करें, मैं अपने पापा की कसम खाती हूँ, अपनी मरी हुई माँ की कसम खाकर कहती हूँ, मैं सच में नहीं जानती ये कौन है। मैंने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन नहीं जान पाई। उस दिन जब मैं घर जाना चाहती थी तो यही वजह थी कि मैं राहुल से मिलकर उसे इस बारे में बताना चाहती थी ताकि वो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन मैं उससे नहीं मिल पाई। मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, ये सब उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन। इतना कहते कहते करण का नाम लेने से पहले ही आरना कुछ सोचते हुए चुप हो जाती है। ब्लैंक एक्सप्रेशन से, किस दिन से शुरू हुआ ये सब? कहीं इस सब का ताल्लुक कल वाले हादसे से तो नहीं ना? और अगर तुम मुझे सिर्फ बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हो तो पहले ही बता दूं कि नाकाम रहोगी।
दुखी भाव से, मैं आपको बातों में उलझाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सच सोचकर चुप हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, भावुकता से मैं जानती हूँ कि अगर मैं चीख चीख कर भी सबके सामने सच कहूँगी तब भी आप और बाकी सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराएंगे, और कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए भी सिर्फ मेरे ही चरित्र पर उंगली उठेगी। अत्यधिक भावुकता से कोई यकीन नहीं करेगा मुझ पर, कोई भी नहीं। इस वक्त रिदांश के दिल को आरना की आंखों में सिर्फ सच्चाई नजर आ रही थी, और आज पहली बार रिदांश का दिल उसके दिमाग पर भारी पड़ रहा था, और आज पहली बार ही उसने आखिर में आरना के मामले में अपने दिमाग की न सुनकर अपने दिल को चुना। रिदांश, आई विल ट्रस्ट यू। रिदांश की बात सुनकर आरना हैरानी से उसकी तरफ देखने लगती है, मगर आज पहली बार उसका दिल भी उसे रिदांश और उसकी बात पर भरोसा करने का कह रहा था। रिदांश बिना किसी भाव के, नाउ टेल मी, कौन है वो? आरना कुछ पल झिझकने के बाद, उसका नाम, एक पल को अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए, करण है। आरना की बात सुनकर रिदांश कुछ रिस्पांस करता उससे पहले ही आरना और उसे दरवाजे पर किसी चीज के गिरने की आवाज आती है, और दोनों दरवाजे की तरफ देखते हैं तो सामने नम्या को खड़ा पाते हैं, जिसके हाथ से आरना की बात सुनकर अभी अभी कॉफी के मग की ट्रे नीचे गिर गई थी, और वो गुस्से से खा जाने वाली नजरों से आरना को ही एकटक देख रही थी।